आप नहीं समझते कि हमारा जो सिलेबस है, तालीमी निजाम का जो सिलेबस है, वो भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। पहले ऐसा होता था कि जो भी तालिब इल्म होता था वो समाजियात भी उसे पढ़ाई जाती थी, गुलिस्तान बोस्तान अदब पढ़ाया जाता था। अब हम देखते हैं कि वो समाजियात नहीं पढ़ता। अगर मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर मेडिसिन का स्टूडेंट है, वो समाजियात बिल्कुल नहीं पढ़ता। फिर हम ये देखते हैं कि एक जब नौजवान सोसाइटी में आता है तो मदरसे से फारिग होने वाला नौजवान और इंग्लिश मीडियम से फारिग होने वाला नौजवान और उर्दू मीडियम से आने वाला, उनके दरमियान बड़े फासले होते हैं, बहुत ज्यादा फासले होते हैं, और ये फासले फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम का जरिया भी बनते हैं। तो इस एक वेरिएबल क्या सिलेबस नहीं है? आप समझते कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है?
कोई शक नहीं है इसमें। देखिए, बात यह है कि उस्ताद आला दर्जे का है तो बुरे से बुरे निसाब तालीम में भी कुछ से कुछ नतायज पैदा कर दे, लेकिन निसाब तालीम की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। हम तो अभी तक ये तय नहीं कर सके कि हमारे यहाँ यकसा निजाम तालीम होना है या नहीं होना, ये तय नहीं कर सकते। यानी हम कहते हैं कि ये एक कौम है, तो मैंने कई मरतबा ये तवज्जो दिलाई है कि पहले 12 साल की तालीम तो बच्चा अपने इंतखाब से नहीं हासिल करता, ये मुआशरा देता है। वालदैन फैसला करेंगे, मुआशरा फैसला करेगा, यानी सब वालदैन मिलकर ही मुआशरा बन रहा है। तो मुआशरे ने क्या कभी ये तय किया है कि हमारे बच्चों को पहले 12 साल की जो बुनियादी तालीम, जो ब्रॉड बेस होनी चाहिए, वसी बुनियाद होनी चाहिए, वो मिलती है या नहीं मिलती? अच्छा, फिर उस तालीम में बुनियाद कहां से उठानी चाहिए? यानी सबसे पहले तो बच्चे को पहले 2-3 साल आप अलबा भी ठीक तरह से अगर ना सिखाएं तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। ये तो सिखाएं तुम इंसान हो, तुम इंसान की हैसियत से पैदा किए गए हो, तुम्हारा वजूद ये है, तुम्हारा माशरा ये है, तुम्हारे रिश्ते ये हैं, तुमने सड़क पर जाना है तो इस तरह जाना है, तुमने लोगों से बात करनी है तो ऐसे बात करनी है, तुम्हें मामला करना है तो इस तरह करना है। हमारे यहां हमारे निजामे तालीम में इसकी कोई अहमियत ही नहीं। यानी ये तो मेरे नजदीक
है ही नहीं,
ये बुनियाद है,
नहीं नहीं
ये बुनियाद है। यानी आप पहले ये तो बताएं कि एक इंसान की हैसियत से, देखिए तालीम में 3 बुनियादी चीजें, जब तक वो आखिरी दर्जे में पुख्ता ना हो जाए, आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये जेरे बहस नहीं आना चाहिए। पहली चीज ये कि इंसान की हैसियत से आपको कैसा इंसान बनना है, दूसरे ये कि आपके लिए दरवाजा खुलता है लैंग्वेजेस से, आपको अपने माहौल के लिहाज से क्या क्या जुबानें आला दर्जे की आनी चाहिए और सीखनी चाहिए। वो जो अमल है, वो जो जुबान आपकी तालीम का जरिया बननी चाहिए वो क्या है, उसका फैसला करना चाहिए आपको। और वो चीजें जिनका ताल्लुक हुनर से है, जैसे आप कहते हैं मैथमेटिक्स से साइंस, यानी ये वो बुनियादी चीजें हैं कि जिनमें पुख्तगी अगर नहीं है तो आप ऊपर जो बुनियाद बनाएंगे वो फिर तासुरैया मीरवत दीवार कच, वो ऐसे ही चलेगी। तो सबसे बुनियादी चीज ये, हमारे यहां इस सारे निसाब तालीम को, इस तालीमी निजाम को एक रिव्यू की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, इसकी तश्कीलें जदीद होनी चाहिए। हम तो अभी तक बुनियादी फैसले नहीं कर सके। यानी इस वक्त देखिए कि हमारे यहां अंग्रेजी निजाम, अंग्रेजी मीडियम निजाम तालीम की अपनी एक दुनिया है, उर्दू मीडियम निजाम तालीम पहले कह सकते हैं कि एक मतवादी जगह पर खड़ा था, अब तो बिल्कुल ही दरमादा होकर रह गया है, और आहिस्ता आहिस्ता तहलीली शायद हो जाए। अच्छा, जो आपके दीनी मदारस का निजाम है वो अपनी एक अलग दुनिया रखता है, तो इनमें तो कोई इबलाग के रिश्ते ही नहीं। ये माहिरीन तालीम बैठे हुए हैं, आप ये देखिए कि दुनिया भर का इल्म इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है कि आपके यहां जो हकीकी इल्म है वो आपकी जो मादरी जुबान है उसके जरिए से इम्पार्ट होता है। यानी आप पहले ही मरहले में अगर बच्चे को किसी दूसरी जुबान को जरिया तालीम बना देते हैं तो हकीकत में आप इल्म में और उसके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देते हैं, वो सारी जिंदगी उस दीवार को ढाता रहता है,
ठीक,
और फिर उसी से टक्करे मार के खत्म हो जाता है। आप देखिए इस वक्त भी, यानी मेरा एहसास ये है, लोग कहते हैं ना बहुत कैतुर रिजाल हो गया, आला दर्जे के लोग नहीं पैदा होते, मुझे कभी इससे इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे नजदीक अल्लाह ताला जिस तरह औरतों और मर्दों का तवाजुन कायम रखता है, इसी तरह सलाहियतों का तवाजुन भी कायम रखता है। आला तरीन लोग, आला तरीन शायर, आला तरीन अदीब करता रहता है पैदा। असल चीज यह है कि आपने उनके लिए तालीम, तरबियत और उनकी कबूलियत के क्या मौके पैदा किए। यानी कितने लोग हैं जो देहात में, मैं आपसे अर्ज करता हूं, गैर मामूली जहानत के साथ आपके इन्हीं फैसलों की भेंट चढ़ जाते हैं। यानी यह हो सकता है कि एक आदमी किसी दूसरी जुबान का पिचूट न रखता हो, آپ کہتے ہیں نا علم کا دروازہ اسی کو لے، لینگویجز سکھائیے، لیکن جو علم ہے وہ اصل میں آپ کی اپنی زبان ہے جس کے اندر سے نکل کے جاتا ہے بنیادی طور پر. تو اس طرح کے جو مصنوعی معاملات ہم نے طے کر رکھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے ہاں کیا انگلش میڈیم کے تھے سارے ادارے؟ یہ آپ کی جتنی قیادت میں بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی انگریزی زبان میں کمیونیکیٹ کرنے میں یا اس میں دوسروں سے بات کرنے میں کوئی دقت پیش آتی؟
دیکھ وہ کرتے تھے لیکن لینگویج ان کی اپنی تھی، بہرحال وہ کرتے تھے، کمیونیکیٹ تو ہو سکتا
ہے، جانتے تھے نا،
بالکل جانتے
تھے، سبھی جانتے تھے، کرتے بھی تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنے پس... اچھا زبان کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی، زبان اپنا کلچر رکھتی ہے، اپنی تہذیب رکھتی ہے، آپ اس کے اندر جو شخصیات پیدا کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں، ان سے وہ انسپریشن حاصل کرتے ہیں، وہاں سے در حقیقت انسان کی شخصیت کی تعمیر ہونی شروع ہوتی ہے. میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کے زمانے ہی میں وہ جو ہماری تہذیبی شخصیات ہیں وہ بالکل متعین ہو کر سامنے آ گئی تھیں، اور جن میں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو میں اپنا آئیڈیل قرار دے سکتا ہوں. تو یہ اب آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد آپ کے بچوں کے لیے اقبال اور غالب اور فردوسی اور رومی اور ابن تیمیہ اور شبلی یہ اجنبی لوگ ہوں گے. ذرا انتظار کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ محض شخصیات ہیں جو ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ تہذیب ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کے آدرش ہیں، ان کے اندر آپ کی قومی شخصیت نمودار ہوئی ہے. یہ سب کچھ آپ کھو دیں، ہے کسی کو اس کا احساس؟